الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے. دو اینٹوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ استعمال کیجئے, وہ دو اینٹیں یکجان ہو جائیں گی. کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو سیمنٹ کام نہیں آئے گا, گلو استعمال کریں وہ ٹکڑے یکجان بن جائیں گے. لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے اللہ نے کیل بنایا, آپ کیل کے ذریعے ان دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑیں وہ ایک بن جائیں گے. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو نہ کیل کام آئے گا, نہ گلو کام آئے گی, نہ سیمنٹ کام آئے گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی دھاگا بنایا, اس کے ذریعے دو ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے. لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی دھاگا بھی کام نہیں آتا, اس کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کو بنایا. ویلڈنگ کے ذریعے لوہے کے دو ٹکڑے یکجان ہو جاتے ہیں. پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے ایلفی بنی استعمال کیجئے, دو ٹکڑے آپس میں جڑ جائیں گے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جب بھی کوئی نہ کوئی تیسری چیز ضرور ہوتی ہے تو دو دلوں کو جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو استعمال کریں تو دو دل ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں جڑ جائیں؟ اس چیز کا نام ہے دین, شریعت. اگر وہ دونوں بندے شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں, نیک ہو جائیں, تو ان کے دلوں میں اللہ محبت کو بھر دیں گے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ شک جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کریں گے, سیجعل لهم الرحمن ودا, رحمان ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا. جو محبت دین کی نسبت سے ہوتی ہے وہ سب محبتوں سے زیادہ پکی ہوتی ہے. جو محبتیں دنیاوی اغراض کے لیے ہوتی ہیں وہ تو محبتیں نہیں کہلاتیں, وہ تو خواہشات کہلاتی ہیں. ادھر خواہش پوری ہوئی ادھر نشہ اتر گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا مطلب کی ہوتی ہے, مطلب نکل جاتا ہے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں, مگر دین کی محبت تو سچی محبت ہوتی ہے, دائمی محبت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو یہ زندگی بھر کی محبت ہوتی ہے. اس کی مثال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں आपस में इतनी मोहब्बतें थीं, एक का गम दूसरे का गम, एक की खुशी दूसरे की खुशी, एक दूसरे के साथ इस तरह रहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया रुहमा बैनहुम, वो तो एक दूसरे के साथ बहुत रहीम व करीम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो अनफक्त मा फिल अर्द जमीया मा अल्लफ्त बैन कुलूबे, आप जमीन के सारे खजाने खर्च कर देते, आप इनके दिलों में मोहब्बतें नहीं डाल सकते थे, वलाकिन अल्लाह अल्लफ बैनहुम, इनके दिलों में तो अल्लाह ने मोहब्बतें डाली हैं। अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होते हैं जो मोहब्बत के नमूने बनकर रहते हैं, वो अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं और उसकी फरमाबरदारी करते हैं और अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। चुनाचे इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, एक रात आंख खुली तो देखते हैं कि कोई फरिश्ता है और रोशनी है कमरे में और वो बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा क्या लिख रहे हो, उसने जवाब दिया कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो इब्राहिम अदम ने कहा कि भाई मेरा नाम देखो लिस्ट में है या नहीं। उसने कहा तुम बादशाह हो, तुम दुनियादार बंदे हो, तुम्हारा अल्लाह के चाहने वालों में कहां से नाम आ गया। चुनाचे पूरी फहरिस्त देखी तो उनका नाम नहीं था। तो इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि अच्छा अगर अल्लाह के चाहने वालों में मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम उस फहरिस्त में लिख लो जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। चुनाचे उसने वो नाम लिख लिया। अल्लाह की शान देखें कि कुछ अरसे के बाद फिर ख्वाब आया, देखा कि वही बंदा कोई लिख रहा है। पूछा क्या लिख रहे हो, उसने कहा कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं कि मेरा नाम है। तो उसने दिखाया कि सबसे ऊपर इब्राहिम अदम का नाम लिखा हुआ था, गो कि जो बंदा अल्लाह के बंदों से दीन की निस्बत से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। तो दीन ये चाहता है कि हमने मिलजुल कर जिंदगी गुजारनी है, हम अच्छे अखलाक से जिंदगी गुजारें, हमारे अंदर ईसार हो, हमदर्दी हो, अफ़ो दरगुज़र हो, एक दूसरे के लिए मोहब्बतें हों। कई मरतबा जब दीनदारी नहीं होती तो फिर तबीयतों के अंदर नफ़रतें, अदावतें, दुश्मनियाँ, गुस्से और ये चीज़ें आ जाती हैं और ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि घर के अच्छे फ़र्द बनकर रहें, मुआशरे के अच्छे फ़र्द बनकर रहें, एक अच्छे मुसलमान बनकर रहें, अपनी तरफ से दूसरों को राहत पहुंचाएं, अपनी तरफ से अल्लाह के बंदों के लिए राहत जान बने, दूसरों के दिल से दुआएं निकल रही हों, उनके साथ इतना अच्छा अखलाक का बर्ताव करें, यूं समझें कि दूसरों के दिल जीत लें। इसलिए कि किसी मुसलमान के दिल को खुश करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि एक शख्स ने उनसे 700 दीनार मांगे, उन्होंने 7000 देने का हुक्म दिया। तो पूछने वाले ने पूछा कि 700 मांगे थे, आपने 7000 का हुक्म दिया। फरमाया इसलिए कि मैं चाहता था कि उसको 7,000 मिले और उसके दिल को खुशी मिले जिसकी वो तवक्को नहीं करता था। और ये जो किसी मुसलमान के दिल को अचानक खुशी पहुंचानी होती है, ये अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि इस अमल पर अल्लाह ताला बंदे की जिंदगी के पिछले सब गुनाहों को माफ कर देते हैं। अब जरा सोचिए कि किसी के दिल को खुश करना जिस बात की उसको तवक्को ना हो, इस पर अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। तो हम अपने घरों में रहते हुए औरतें अपने खाविंद का दिल खुश करें, वालिद का दिल खुश करें, भाई का दिल खुश करें, बेटे का दिल खुश करें, बेटियों का दिल खुश करें, माहौल के अंदर रहते हुए अल्लाह के बंदों और बंदियों के लिए खुशियों का सबब बनकर रहें। अगर आप इस तरह बनकर रहेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मोहब्बत फरमाएंगे। आप खुद घर में देखें कि आपके बच्चों में से अगर कोई बच्चा सबके साथ सुलो सफाई से रहता हो, सबके साथ मोहब्बत प्यार करता हो, तो वो बच्चा आपकी आंख का तारा होता है कि जी मेरा तो ये बच्चा फरिश्ता सिफत है, मेरा इतना अच्छा बच्चा है, झगड़ा नहीं करता, फसाद नहीं मचाता, उधम नहीं करता, धमाल नहीं डालता, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान मर्द हो या औरत हो, घर के अंदर मुआशरे के अंदर एक अच्छा इंसान बनकर रहे, अखलाक अच्छे हों, किरदार अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, तो अल्लाह ताला को भी उस बंदे पे प्यार आता है। ये मेरा कितना प्यारा बंदा है, कितना अच्छा बंदा है, जो दूसरे बंदों के लिए राहत जान बन गया है। अब दिल में एक सवाल पैदा होता है कि हम ऐसे अच्छे कैसे बने। उसके लिए उलमा ने 6 चीजें बताई हैं कि अगर इंसान उन 6 चीजों से बचे तो वो अच्छा इंसान बन जाता है। और ये 6 चीजें वो हैं जो दिलों के अंदर नफरतें पैदा होने का सबब बनते हैं, जो एक दूसरे के दिल दूर होने का सबब बनती हैं। तो वो 6 चीजें जो इंसानों के दिलों में फासले डाल देती हैं, एक दूसरे से दूर कर देती हैं, आज की महफिल मजलिस में उन 6 चीजों का तज़करा करना है। और अजीब बात है कि वो सारे अल्फाज गैन के हर्फ से शुरू होते हैं। तो 6 गैन आज आपको बताए जाएंगे, आपने उसे याद करना है और उनसे अपने आप को बचाना है, फिर देखना आपके अखलाक कितने अच्छे बनते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज गफलत, गैन से गफलत। ये गफलत अल्लाह ताला को पसंद नहीं, इसलिए फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, आप गाफिलीन में से ना हो। गाफिल कहते हैं भूल जाना या किसी को इग्नोर कर देना। आज देखो यही गफलत दूसरे के साथ रंजिश का सबब बनती है। लोग कहते हैं कि जी फलां बंदा तो हमें इग्नोर करता है। बीवी को मियां से यही शिकवा होता है कि जी सारे जहान की इनको परवाह है, हमारी तो परवाह ही नहीं। बाहर दोस्तों में ये बड़े खुश रहते हैं, हम तो रात तक इंतजार में बैठते हैं तो कोई टाइम ही नहीं होता हमारे पास बात करने के लिए। बीवी एक काम कहे और खाविंद भूल जाए तो यकीनन वो आपस में तलख कलामी का जरिया बन जाता है। आप बीवी को काम कहें कि कल मुझे सुबह दफ्तर जाना है, कपड़े तैयार रखना, और वो गफलत करे तो आपको गुस्सा आएगा। तो मालूम हुआ कि ये गफलत गुस्से का सबब बन जाती है। इसको लापरवाही कहते हैं, और ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बच्चे पढ़ने वाले अगर पढ़ने में गफलत करें तो माँ बाप परेशान, अगर भाई भाई की परवाह ना करे तो माँ बाप परेशान, अगर मजदूर फैक्ट्री के अंदर अच्छे काम को न करे या काम में गफलत बरते तो मालिक परेशान। तो मालूम हुआ कि आप देखें कि नफरतें बुनियादी तौर पे गफलत ही की वजह से पैदा होती हैं। जिस तरह गफलत की वजह से लोगों के दिलों में एक दूसरे से खिलाफ नफरत आ जाती है, अल्लाह ताला को भी गफलत पसंद नहीं, इसलिए फरमाया वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, उसकी बात न मानो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। तो गाफिल बंदा अल्लाह को भी नापसंद, तो कोशिश करें कि हर वक्त दिल में अल्लाह की याद रहे। दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम काज में मशगूल और दिल अल्लाह ताला की याद में मशगूल। गो मैं रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे तुम जितना भी दुनिया के काम में रहो मगर तुम्हारे दिल में तो मेरी याद हो। यही तो फर्क है, एक है मखलूक की नफसानी शैतानी शहवानी मोहब्बत, उसमें इंसान ये चाहता है कि महबूब का दिल जहां मर्जी हो इसका जिस्म मेरे पास हो, क्योंकि नफसानी मोहब्बतों में जिस्म की जरूरत होती है। तो मुहिब चाहता है कि जिस्म मेरे पास हो दिल इसका जहां मर्जी हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का मामला अजीब है। अल्लाह ताला चाहते हैं मेरे बंदे तेरा दिल मेरे पास होना चाहिए, मुझे इसकी परवाह नहीं तेरा जिस्म जहां भी हो। तो हम घर में हैं, मस्जिद में हैं, नमाज में हैं, या घर वालों के साथ बैठे हैं, जिस हाल में भी हैं, अगर दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे है तो अल्लाह ताला हमसे खुश हैं, अल्लाह ताला हमसे राजी हैं। कितने लोग ऐसे गुजरे बाजार के माहौल में बैठते थे, एक लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं होते थे। शेख शाहबुद्दीन सुहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं एक मर्तबा बाजार से गुजर रहा था, मैंने एक नौजवान बच्चे को देखा, उसके गिर्द गाहकों का हुजूम था। मैंने उसके दिल की तरफ देखा तो उसका दिल एक लम्हा भी अल्लाह से गाफिल नहीं हो रहा था। तो गाहकों के जुर्मट में बैठकर अल्लाह वाले अल्लाह को याद कर लेते हैं, और अगर याद करने की मेहनत न की जाए तो औरत घर में अकेली भी होती है फिर भी अल्लाह याद नहीं आता। तो ये गफलत हमारे लिए नुकसान का सबब बनती है, दीन का नुकसान हो या दुनिया का नुकसान हो। तो आप दिल में ये बात बिठा लें कि मैंने कामों में भी गफलत नहीं करनी, इबादत में भी गफलत नहीं करनी, जिक्र में भी गफलत नहीं करनी। वला तकुम मिनल गाफिलीन, अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम गफलत करने वालों में से ना बनो। दूसरी चीज जो नफरतों का सबब बनती है उसको गीबत कहते हैं, गैन से गीबत। गीबत कहती है किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कर देना कि अगर उस बंदे को मालूम हो तो वो उसको बुरा समझे। इसको शरीयत ने कबीरा गुनाह करार दिया, फरमाया वला यग्तब बादुकुम बादा, तुम में से कोई दूसरे की गीबत न करे। हदीस मुबारक में है अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत तो जिना से भी ज्यादा बुरी होती है। अक्सर देखा है कि जहां दो चार बंदे मिल बैठते हैं वो किसी तीसरे की बात छेड़ देते हैं और अक्सर औकात वो बात गीबत होती है, तो करने वाला भी कबीरा का मुर्तकिब, सुनने वाला भी कबीरा का मुर्तकिब। और ये गीबत जिंदों की भी हो सकती है और जो फौत हो चुके उनकी भी हो सकती है, ये गीबत हाजिर की भी हो सकती है और ये गीबत गायब की भी हो सकती है, ये गीबत एक फर्द की भी हो सकती है, ये गीबत एक जमात की भी हो सकती है। तो इसलिए गीबत से अपने आप को बहुत ज्यादा बचाएं। किसी के बारे में कमेंट्स पास कर देना आज ये सबसे आसान काम नजर आता है, लेकिन कल क्यामत के दिन जब अल्लाह ने पूछ लिया, बता तूने फलां को कमीना क्यों कहा, फलां को तूने बेईमान क्यों कहा, तो उस दिन परेशानी होगी कि काश हमने सोच समझ कर अपनी जुबान से अल्फाज निकाले होते। शरीयत ने कहा कि अगर किसी की गीबत की हो तो फकत तौबा करने से यह गुनाह माफ नहीं होता, बल्कि उस बंदे से माफी मांगनी पड़ती है। अब उस बंदे को अगर आप बताएं कि जी मैंने आपके बारे में ये बातें की, तो झगड़ा तो और बढ़ जाएगा। तो शरीयत ने इसका हल बताया कि अगर आपने किसी की गीबत की है तो बस उससे यूं कहें कि जी आपके तो मेरे ऊपर बहुत हुकूक हैं और मैं तो अदा नहीं कर सकी, आप मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दें। इस बात को सुनकर अगर उसने कह दिया हां तो भी ठीक, और अगर वो मुस्कुरा पड़ी तो भी उसकी तरफ से इजाजत मिल गई। दुनिया में माफी मांगना आसान, क्यामत के दिन उसका हिसाब देना मुश्किल काम। क्योंकि हदीस मुबारका में है कि जिस बंदे ने किसी की गीबत की होगी तो क्यामत के दिन उस बंदे को इजाजत दी जाएगी कि तुम इस गीबत करने वाले के नामे अमाल में से जितनी नेकियां ले सकते हो ले लो। तो साफ जाहिर है कि क्यामत के दिन तो कोई थोड़े के ऊपर राजी नहीं होगा, हत्ता कि अगर सारी नेकियां लेकर भी वो राजी ना हुआ तो हदीस पाक में है कि उस बंदे के गुनाहों को लेकर इस बंदे के सर पे डाल दिया जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी महरूमी, आए थे नेकियां लेकर और गए यहां से तो सब गुनाह अपने सर पे उठाकर। इसका एक तरीका है कि खुद तो आप किसी की उसके पीठ पीछे बात करें ही ना, और दूसरी बात अगर कोई करने लगे तो अव्वल तो आप कह दें कि जी ये मुनासिब नहीं, और अगर आप समझें कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं लोगों को रोक सकूं, तो फिर उस बंदे की कोई ना कोई अच्छाई बयान कर दें। मिसाल के तौर पे किसी औरत की गीबत की गई, आप कहें वो है तो बड़ी जहीन है, तो बड़ी समझदार, बातें तो बहुत अच्छी करती है, बड़ी पढ़ी लिखी है। अगर आपने उसकी खूबियां बयान कर दी तो गोया आप गीबत करने वालों के साथ खुद शामिल नहीं हुई। तो यह गीबत से बचने का एक आसान तरीका है। तीसरी चीज गिल कहते हैं। गिल का मतलब होता है दिल के अंदर कीना होना। कीना का मतलब ये कि किसी के साथ रंजिश हो तो फिर दिल के अंदर एक दुश्मनी आ जाती है, वैर आ जाता है, और इंसान चाहता है कि उस बंदे को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम इस कीने को नापसंद फरमाते थे। चुनांचे हदीस मुबारका में है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रात का वक्त आता है मैं अपने सीने को कीने से खाली कर लेता हूं, ये मेरी सुन्नत है, और जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो क्यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। चुनाचे आप अपने दिल से सब रंजिशों को निकाल दें, علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. اب اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو ہم دل سے ایمان والوں کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بوجھ ہے، سب ختم کر دیں، اور کریں بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ یقینا انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ چلا گیا پہاڑ پر اور ایک غار میں رہ کر اس نے عبادت شروع کی. ایک سال عبادت کرنے کے بعد اسے الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت ہم نے قبول کی، تو مانگ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کھانے کو ہنڈیا مل جائے، روٹی مل جائے، میں تیرا دیا کھایا کروں گا اور تیرے گیت گایا کروں گا. دعا قبول ہوئی اور اس بندے کو غیبی نظام سے ہر وقت کھانا مل جاتا تھا. یہ کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر وہاں سے یہ اپنے گھر واپس آ گیا. اب ایک کا کھانا تین بندے بھی کھا بیٹھتے ہیں. اس کو جب کھانا ملتا تو گھر کے دوسرے لوگ بھی کھا لیتے. جب سب کو روزانہ کھانا ملنے لگا تو صحتیں اچھی ہو گئیں، چہروں پہ سرخی آ گئی. ان کا ایک رشتہ دار پڑوسی تھا جو اندر سے بڑا حسد کرتا تھا. اس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس بزرگ کے پیچھے پڑ گیا. حضرت مجھے بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کرنی شروع کی. پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتاؤں، مگر ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں تو اس طرح جگیا تھا اور اللہ کے ہاں عبادت قبول ہوئی اور اس طرح یہ ہنڈیا مجھے روز ملنے لگ گئی. یہ سن کر وہ بندہ بھی بستر اٹھایا اور اسی جگہ کے جا پر بیٹھ گیا اور وہاں اس نے بھی تسبیح پھیرنی شروع کر دی. ذکر کرتے کرتے ایک سال اس کو بھی گزر گیا. تو ایک سال کے بعد اس کے دل میں الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت قبول ہوئی، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اب اس نے جو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے ہڈیا نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہڈیا ملتی ہے وہ بند ہو جائے. اس کو کینہ کہتے ہیں کہ انسان کو دوسرے کا اچھا نہیں لگتا. کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، کسی کے بیٹے کا کام کاروبار چل جائے، تو جس کے دل میں کینہ ہو اسے اچھا نہیں لگتا. یہ تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا تو فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے. ایک صحابی جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آنے والے صحابی کی زندگی قریب سے تو دیکھوں، کون سی نیکی یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی. چنانچہ جب مجلس برخاست ہونے لگی تو یہ صحابی اس سے کہنے لگے، بھائی اجازت ہو تو میں تین دن آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ. چنانچہ یہ صحابی ان کے گھر آ کر مہمان بنے और दिन रात उनके आमाल का जायजा लेते रहे। लेकिन ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सहाबी के मामूलात वही हैं जो बाकी हजरात के हैं, कोई अनोखा अमल तो मुझे नजर नहीं आया। तो इस पर इन्होंने पूछ लिया साहिब खाना से कि जी आपके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया ये जन्नती है, तो मुझे शौक हुआ कि मैं पूछूं तो सही, देखूं तो सही कि कौन सा अमल करते हैं। तीन दिन रात आपके घर मेहमान रहने के बावजूद मुझे आपका कोई खास अमल नजर तो नहीं आया, आप ही बता दीजिए। जब इन्होंने पूछा तो फिर उस शख्स ने बताया कि देखें मेरी आदत है, रात को जब मैं बिस्तर पे लेटने के लिए तैयार होता हूं तो उस वक्त मेरे दिल में जितना भी लोगों के खिलाफ दिल में बात होती है मैं सब मिटा देता हूं, भुला देता हूं, और मैं सीना बेकीना लेकर सोता हूं। शायद इस अमल की वजह से मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो आप भी ये आदत बना लें, सास के बारे में रंजश है, बहू के बारे में है, बीवी के बारे में, खामिन के बारे में, बहन के बारे में, किसी के बारे में भी है, नंद के बारे में है, अल्लाह के लिए माफ कर दिया करें। जब आप अल्लाह के लिए माफ करेंगी तो देखेंगी आपको सीने के अंदर एक ठंडक महसूस होगी, ईमान की हलावत, ईमान की मिठास नसीब होगी। वरना तो जिसके दिल में दुश्मनी हो वो तो उसको उसका बुरा ही चाहता है जैसे भी हो सके। कहते हैं कि एक आदमी को दूसरे से कीना था, तो उसको एक बंदा मिला, उसने कहा कि जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा मैं डबल उसके साथ करूंगा, तुम बताओ। तो ये एक शख्स कहने लगा कि तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। उसने कहा क्यों, तुम्हें आंख प्यारी नहीं है? कहते प्यारी तो बड़ी है, लेकिन तुम मेरी एक आंख फोड़ोगे तो फिर दूसरे बंदे की तुम्हें दोनों आंखें फोड़नी पड़ जाएंगी। तो कीना ऐसा कि इंसान अपना भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है। तो अल्लाह की पनाह मांगे और गिल से बचें। ये गिल अरबी का लफ्ज है, उर्दू में इसका तर्जमा कीना है। और अल्लाह से दुआ भी मांगा करें, अल्लाह हमें सीना बेकीना अता फरमा। तो गफलत से बचें, गीबत से बचें, गिल से बचें, और चौथी चीज गुल्व से बचें। गुल्व का माना यह होता है कि किसी चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत का दे देना। आमतौर पर देखा है कि आपस की रिश्तेदारियों में गुल्व का मुजाहरा हो जाता है। मसलन औरत है तो वो अपने मेकों के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर हस्बैंड अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा, उनकी सही गलती को भी गलती तस्लीम नहीं करेगा। तो ये जो गुल्व है ना, ये इंसानों के दरमियान नफरतें पैदा होने का सबब बनता है। इस गुल्व से बचने की जरूरत है ताकि दिलों में एक दूसरे से जुदाई ना आए। पांचवी चीज जो दिलों को एक दूसरे से दूर कर देती है उसका नाम है गुरूर। गुरूर का मतलब तकब्बुर या उजब समझ लीजिए। अगर बंदे को अपने हुस्न पे गुरूर हो, माल और दौलत पे गुरूर हो, तालीम पे गुरूर हो, तो वो बंदा अपने आमाल इसी दुनिया में जाया कर बैठता है। क्योंकि हदीस पाक में है ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, मन काना फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किब्र, कि जिस बंदे के दिल में जर्रा के बराबर भी तकब्बुर होगा। तो अपने को दूसरों से ऊंचा समझना, बड़ा समझना, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس تکبر سے بھی بچیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دربار سے دھتکارا تو اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تکبر تھی. فرعون کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبویا, اس کی وجہ فرعون کے اندر تکبر تھا. جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. تو اس تکبر سے میں سے بچنے کی ضرورت ہے. مال پہ غرور کرنا, حسن و جمال پہ غرور کرنا, یہ ڈھلتی چھاؤں پہ غرور کرنے کی مانند ہے. تو اس لیے انسان اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. وإعجاب المرء بنفسه, شریعت نے کہا کہ جس بندے کے اندر عجب ہو یہ عجب اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, امیر صحابہ سے بھی تعلق تھا, فقیر صحابہ سے بھی, ان کے درمیان گھل مل کر بیٹھتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے, غلام تھے, آزاد ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو دیکھو کیا محبتیں ملی. ایک دیہاتی تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت فرماتے تھے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. یہ تکبر انسان کے لیے برباد ہونے کا سبب بن جاتا ہے. متکبر بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں. دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی آخرت میں تو سزا ملے گی. حدیث پاک میں آتا ہے دنیا میں مرنے سے پہلے بھی سزا ملتی ہے. ایک تکبر, جتنا تکبر کرے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ذلیل کریں گے. کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے گی کہ اس کی سب کے درمیان ذلت ہوگی. اور دوسرا, جو بندہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسی دنیا میں اس نافرمانی کی اس کو سزا دیتے ہیں. چنانچہ ایک ڈاکٹر نے عجیب قصہ سنایا. کہتا ہے ایک دیہاتی لڑکا میرے پاس آیا, بیمار تھا, دیکھنے میں بڑا صحت مند, اور بیماری یہ تھی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیختا تھا اور کہتا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے میرا کوئی گلا دبا رہا ہے, کوئی میرا گلا دبا رہا ہے. اب اس کی اس بے قراری تکلیف کو دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی ہوئی اور میں نے اس کا علاج معالجہ شروع کیا. دوسرے دن اس لڑکے کا والد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ پریشان نہ ہو, اس لڑکے کو اس کے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ اس لڑکے نے من پسند کی لڑکی سے شادی کی, ماں اس کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ بولتی تھی تو یہ اپنی امی کو کہتا تھا خبردار تو نے زبان کھولی میں تیرا گلا دبا دوں گا. یہ اپنی ماں کو یہ الفاظ کہتا تھا, اللہ نے اسی دنیا میں اس کی پکڑ کی, اس کو ایسی بیماری لگی کہ یہ چیختا ہے کہ کوئی میرا گلا دبا رہا ہے, اور واقعی اس کا گلا گھٹ رہا ہوتا ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے, اسی طرح تکبر کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو انسان اپنے اندر ہمبلنس پیدا کرے, عاجزی پیدا کرے, और तकब्बुर से बचे। तो पांच बातें हो गईं, गफलत से बचें, गीबत से बचें, ग़िल से बचें, ग़ुल्व से बचें और गुरूर से बचें, और छठी चीज है गुस्सा से बचें। ये गुस्सा इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अक्सर इंसान का नुकसान गुस्से के सबब होता है। गुस्से की वजह से लोग इंसान से नफरत करने लग जाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहीम व करीम हैं और आपके सहाबा आप पे जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर आप सख्त गिर होते और तेज मिजाज के होते तो ये आपके गिर्द से सारे भाग जाते। वलौ कुन तफज्जन गलीज़ल क़ल्ब लन फज़ू मिन हौलिक। तो गुस्सा नहीं ज्यादा करना चाहिए। इसलिए हदीस पाक में नबी साहब ने पूछा कि पहलवान कौन है, तो बताया गया जी कि जिसमें ताकत ज्यादा हो। तो नबी साहब ने फरमाया नहीं, बल्कि जो बंदा अपने गुस्से पे काबू पा ले वो पहलवान होता है। आप जरा गौर करना, गुस्सा आम तौर पर कमजोरी की अलामत होता है। लिहाजा सेहतमंद बनने की बजाय बीमार को गुस्सा जल्दी आता है। मर्द की निस्बत औरत को गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो गुस्सा कमजोरी की अलामत है। बूढ़ों को जवानों की निस्बत गुस्सा ज्यादा आता है। हमने तो बाल बूढ़ों को देखा कि हवा को गालियां निकाल रहे होते हैं। तो मालूम हुआ कि गुस्सा कमजोरी की अलामत है। इसलिए गुस्से में इंसान बड़ा नुकसान कर बैठता है। एक नौजवान आया, कहने लगा हजरत गलती हुई, गुस्से में मैंने बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा भाई मुझे एक मिसाल बताओ कि खुश होकर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दी हो। तलाक देते तो गुस्से में ही है, तो तुम गुस्से में आए ही क्यों? इसलिए बेहतरीन इंसान वो है कि जिसको गुस्सा कम आए, और आए भी तो जल्दी रुखसत हो जाए। आज गुस्से की वजह से छोटी छोटी बातों का पितंगड़ बन जाता है। घरों के अंदर परेशानियां, मियां बीवी के मसले, ये सारे के सारे गुस्से की वजह से। गुस्से में खामिन महीना महीना बीवी से नहीं बोलता, कहीं बीवी एक एक महीना खामिन से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। तो गुस्सा दोनों तरफ से बुरा है, चाहे खामिन की तरफ से हो चाहे बीवी की तरफ से हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर दूसरे की गलती भी हो तो उसको माफ कर दें। हदीस मुबारक में है कि जो शख्स दुनिया में दूसरों की गलती को जल्दी माफ करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी गलतियों को जल्दी माफ फरमा देंगे। तो देखो कितना बड़ा अजर मिला इसके ऊपर कि इंसान अपने गुस्से पे काबू पा ले। और गुस्सा इंसान निकाल भी ले तो वक्ती तौर पे तो इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन फिर सारी उम्र वो इंसान को पछतावा रहता है। चुनांचे एक साहब ऑफिसर थे, वो अपना वाकया लिखते हैं। कहते हैं कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में जाना था, तो मैंने एक कुल्ली को सामान दिया और कहा कि मुझे ट्रेन के फलां डब्बे में पहुंचा दो। रश काफी था, जब ट्रेन आई तो रुकने का टाइम थोड़ा था। मैं तो अपनी जगह पर पहुंच गया, लेकिन वो कुल्ली सामान लेकर नहीं पहुंचा। हत्ता के ट्रेन की विसल भी बज गई दरवाजे भी बंद हो गए। जब दरवाजा बंद होने लगा तो मैं उतर गया कि मेरा तो सामान अभी नहीं आया। अब मेरे सामने ट्रेन जा रही है, मेरी टिकट भी जाया हो गई, मेरी ट्रेन भी छूट गई। मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, मगर मैंने सोचा कि देखो प्लेटफॉर्म पे इतना रश है कि एक बंदे को पैदल चलने का रास्ता नहीं मिल रहा, और पुल्ली ने तो सर पे मेरा बैग उठाया हुआ था, तो लोगों ने रास्ता नहीं दिया होगा। थोड़ी देर के बाद जब रश जरा कम हुआ तो वो कुल्ली मुझे नजर आया, पसीने छूटे हुए थे, परेशान था, मुझे देखते ही कहने लगा कि साहब मेरी गलती नहीं, रश इतना था कि मुझे किसी ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं चीखता रहा कि मुझे रास्ता दो, रास्ता दो, किसी ने रास्ता नहीं दिया। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं कल इसी वक्त इस ट्रेन पे फिर चला जाऊंगा। उसका दिल पुरसकून हो गया, मुझे कहने लगा कि अच्छा साहब मैं आपका सामान आपकी गाड़ी तक पहुंचा देता हूं। चुनाचे मैं वापस आ गया और मैंने एक और दिन वहीं रहने का प्रोग्राम बना लिया। अगला दिन जब हुआ, मैं वक्त से पहले पहुंचा कि फिर देर न हो, तो कहते हैं कि अभी घंटा रहता था ट्रेन के टाइम में। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वही कल वाला कुल्ली मेरे इंतजार में खड़ा हुआ था। मुझे देखा, उसने सामान मेरे हाथों से ले लिया और उठाकर सामान उसने प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, और फिर मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने पैसे भी नहीं लिए। नहीं साहब, मेरी वजह से आपकी ट्रेन में कल डिले हो गई, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आपका दिल मेरी तरफ से खुश हो जाए। वो अफसर कहते हैं कि उसके बाद जब ट्रेन रुख यानी चलने का वक्त आया तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मोहब्बत से किसी रिश्तेदार को भी अलविदा करते नहीं देखा जिस मोहब्बत से मुझे उस कुल्ली ने अलविदा किया। क्या कि वो कुल्ली समझता था कि अगर ये कल गुस्सा करते तो जायज था, मैंने गुस्से को बर्दाश्त किया, वो गुस्से की तकलीफ तो खत्म हो गई। आज भी जब उस कुल्ली का चेहरा सामने आता है, उसकी आंखों के आंसू सेक कर मुझे राहत होती है कि उसने मुझे कितनी मोहब्बत से रुखसत किया। घरों के अंदर मियां बीवी को चाहिए कि गुस्से से काम न लिया करें। कई दफा मां बच्चों पे बेजा गुस्सा करती है, कई दफा खामिंद बीवी पे बेजा गुस्सा करता है, कई जगह सास साहिबा गुस्सा करती हैं। हमारे अकाबिर ने कहा कि जिसका गुस्सा कंट्रोल ना होता हो वो इस बात को सोचे कि क्यामत के दिन एक परवरदिगार होगा जो जिस पर चाहेगा खुशी का इजहार करेगा और जिस पर चाहेगा गुस्से का इजहार करेगा। अगर मैंने दुनिया में लोगों पर गुस्सा किया तो मैंने उसको हिसाब देना होगा, तो परवरदिगार मेरे साथ वैसा ही मामला फरमाया। चुनांचे हदीस पाक में फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे पर गुस्सा कर सकता हो मगर वो अल्लाह के लिए माफ कर दे, अल्लाह ताला क्यामत के दिन उस बंदे को माफ कर देंगे। हजरत थानी रहमतुल्लाह ने वाक्य लिखा है कि गलती पर एक शख्स ने अपनी बीवी को माफ किया था, जब फौत हुआ तो अल्लाह के हुजूर पेशी हुई, फरमाया तूने अपनी बीवी को मेरी बंदी समझ के माफ किया था, आज मैं भी तुम्हें अपना बंदा समझ के माफ करता हूं। तो इस गुस्से को काबू करने की जरूरत है। कई दफा यह भी देखा कि कोई बंदा गलती कर बैठा, अब वो माफी मांग रहा है तो लोग माफी नहीं करते। सुनिए हदीस मुबारका और दिल के कानों से सुनिए। नबी ने सामने फरमाया अगर किसी मुसलमान से गलती हो जाए और वो माफी मांगने के लिए आए और ये बंदा कहे कि मैं तुझे माफ नहीं करता, नबी ने सामने फरमाया
कि ये कहने वाला जो दूसरे मुसलमान को कह रहे हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करता, इसको चाहिए कि क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाए। ये मेरे उम्मती को माफ नहीं करता, मैं क़यामत के दिन इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तो अगर कोई माफी मांगे तो जल्दी माफ कर दिया करें, ये सोचते हुए कि मैं जल्दी माफ करूंगी, इसके बदले अल्लाह मुझे जल्दी माफ कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें ऐसे अच्छे अखलाक अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों के दरमियान अगर कभी एक दूसरे के साथ रंजिश भी होती थी तो वो दुनिया के लिए नहीं होती थी, वो दीन के लिए होती थी, वो अल्लाह के लिए होती थी। जैसे मौलाना याकूब ननौती रहमतुल्लाह अलैह, एक बच्चा सबक बिल्कुल नहीं याद करता था, उसे दो जूतियां लगाईं, वो कहने लगा अल्लाह के लिए माफ कर दें, तो हजरत ने फरमाया तुम्हें अल्लाह ही के लिए तो मार रहा हूं। यानी उनका गुस्सा करना भी अल्लाह के लिए होता था, अपने लिए नहीं होता था। तो गुस्सा इंसान काबू करे तो ये इंसान अल्लाह की नजर में पहलवान है। आज हम गुस्से को माफ कर देंगे, कल क़यामत के दिन हमें माफ फरमा दिया जाएगा। एक वाक़या सुन लीजिए कि हमारे बुजुर्गों के इख्तलाफ की नौइयत कैसे होती थी। एक बुजुर्ग थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास सालिकीन होते थे जो जिक्र अजगार करने वाले और हाल अहवाल वाले होते थे। तो इनके यहां एक नात की महफिल होती थी जिसको महफिल सिमा कहा जाता था। जब शेर पढ़े जाते थे तो बाज लोग गिरते थे, उछलते थे, अल्लाह 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 कहते थे, अजीब कैफियत होती थी। उस जमाने में एक हुकूमत के मुहासिब थे जिनका नाम था काजी जियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह। उनके जिम्मे था कि अगर वो कहीं कोई ऐसी खिलाफ शरत काम देखें तो उसको बंद करवा दें। चुनाचे इनकी महफिल लगी होती थी, काजी जियाउद्दीन आते थे और महफिल बर्खास्त करवा देते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तो खामोश रहते थे, लेकिन मुरीदों को गुस्सा ज्यादा आता था, ये कौन है जो हमारे शेख की महफिल को खत्म करवा देता है। तो मुरीद लोग बोलते रहते थे। अल्लाह की शान देखें कि काजी जियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। जब पता चला कि आखिरी वक्त है तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पे पांच हक होते हैं, उनमें एक अयादत करना, तो मैं उनकी अयादत के लिए जाऊंगा। कोई हम जैसा होता तो कहता देखा हमारे हजरत की मजलसों को बर्खास्त करवाता था, अल्लाह ने कैसा पकड़ा। मगर उन लोगों के दिलों में सच्चाई होती थी। ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं इनकी अयादत के लिए इनके घर जाता हूं। चुनाचे ख्वाजा साहब आए, दरवाजा खटखटाया, काजी जियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह पर आखिरी आखिरी लम्हात थे। जब दरवाजा खटखटाया गया तो उनका शगिर्द भागा हुआ आया, उसने देखा कि वहां पर निजामुद्दीन औलिया खड़े हैं, तो उसने वापस जाके बताया कि हजरत वो तो निजामुद्दीन साहब आए हैं। तो हजरत ने फरमाया कि देखो ये मेरा आखिरी वक्त है, मुझे उनसे कुछ बातों में इल्मी इख्तलाफ है, मैं नहीं चाहता वो आए और मेरी तबीयत पे बोझ पड़े, मैं यकसुई के साथ अल्लाह के हवाले होना चाहता हूं। चुनाचे शागिर्द आया और उसने आके माजरत कर दी कि जी हजरत फरमाते हैं कि आप कुछ अमल ऐसे करते हैं जो मेरे नजदीक बिदत हैं, लिहाजा मैं इस मौके पे आपसे नहीं मिलना चाहता। तो इस पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पैगाम भेजा کہ جا کر قاضی صاحب سے کہو کہ میں ان بدعتوں سے توبہ کرنے کی نیت سے آیا ہوں. جب شاگرد نے آ کر یہ بتایا تو قاضی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے سر سے امامہ اتارا. شاگرد کو کہا کہ میرے بستر سے لے کے دروازے تک میری پگڑی کو پھیلا دو اور خواجہ صاحب سے کہو جوتوں کے ساتھ اس کے اوپر چل کے میرے پاس آئیں, کہ مجھے ان سے اختلاف تھا تو شریعت کے مسئلے میں تھا. سبحان اللہ, یہ کیسی قدسی روحیں ہوتی تھیں کہ جن کا آپس کے اندر اگر اختلاف ہوتا تھا وہ بھی شریعت کے لیے, اگر محبت ہوتی تھی وہ بھی شریعت کے لیے. تو انسان کو ایسا ہی بننا چاہیے کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان ہو. اللہ تعالی ہمیں ان چھ بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, معاشرے کا اچھا فرد بن کر رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی, بتایا گیا ہے کہ بہت ساری عورتیں اس وقت بیعت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں, تو وہ دل میں نیت کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں, آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. نیت کیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ تو بتائے ہو چکی ہیں, چند معمولات ہیں, ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں ایک ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا, 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اور 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ یعنی ذکر قلبی کرنا. ذکر قلبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے. ابھی دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. ہوا او حرص والا دل بدل دے میرا, غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے،